सम्यक ज्ञान चंद्रिका लब्धि सार सपना सार लेक्चर नंबर 3। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने सम्यक दर्शन चरण गुण पाय कुकर्म की पाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु भय भजो शिवराय जिन वाणी के ज्ञान के तत्व श्रद्धा चरण धारी केवल है पावे पद निर्वाण नेम चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान नमो जास जाने निज गुण धाम लब्धि सार को पाय के करि के क्षपणा सार हो है प्रवचन सार सो समय सार अविकार।
आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस लब्धिसार ग्रंथ की रचना की है। उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद देखते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 14 पर आगे 14। यहाँ सबसे शुरू में लब्धिसार की भूमिका को कह रहे हैं। उसमें कर्मों की हमने 10 अवस्थाएं देखी थी, याद है भाई? याद हो गई कि अभी नहीं हुई? हाँ हाँ बोलो। बंद सत्व बीच में सत्ता रहेगी। हाँ उदीर्णा अपकर्षण उत्कर्ष फिर संक्रमण उपशम निदत्य और निकृत। पांच पांच जोड़ी है ना। हाँ रोज एक बार कहने से याद हो जाएगा। अब उसमें से हमने बंद चार प्रकार का देखा, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, और उसके विस्तार से यहाँ चर्चा भी अपनी चली। हमने अभी उसमें अनुभाग बंध में देखा था कि शक्ति के जो अंश है उसको अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं, उससे युक्त ऐसे जो परमाणु उनको एक एक परमाणु को वर्ग कहेंगे, समान शक्ति से युक्त परमाणु उनके समूह को वर्गों के समूह को वर्गणा कहेंगे। एक एक से अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते हुए जहां तक वर्गना है उतने समूह को स्पर्धक कहते, जहां से दो गुना हो जाता है वर्गों का अविभाग प्रतिच्छेद वहां से दूसरा स्पर्धक, फिर तीसरा, फिर चौथा, जहां जाके वर्गना के परमाणु आधे हो जाते हैं क्योंकि ऊपर अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते। ऊपर का अर्थ होता है अनुभाग की अपेक्षा ऊपर, स्थिति की अपेक्षा ऊपर नहीं, क्योंकि प्रत्येक निषेक में अनुभाग के जघन्य से उत्कृष्ट तक परमाणु पाए जाएंगे, ये बात नक्की रखना है। नहीं तो हम जैसे निषेक नीचे पहला है तो पहले निषेक में मंद अनुभाग वाले और ऊपर के निषेक में तीव्र, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसे हमारी खुद की भूल हो रही थी क्योंकि हमने ऐसा ही सुन रखा था। चल तो ये विशेष बात ख्याल में रखने योग्य है। तो हमने वर्ग वर्गणा स्पर्धक गुणहानि आपको समझ में नहीं आई, वर्गना तो समझ में आई, जघन्य वर्गना कि जिसके परमाणुओं में सबसे जघन्य अनुभाग है, ऊपर एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते हुए वर्गना है, पहले स्पर्धक की वर्गना है, फिर उसके ऊपर दूसरे स्पर्धक की वर्गना रखो, तीसरे की रखो, चौथे रखे, तो प्रति वर्गना परमाणु की संख्या घटती चली जाती है, जहां जाके वो आधी होती है वहां तक के पूरे वर्गणाओं के समूह को एक गुणहानि के, उसमें या आप वर्गणाओं की संख्या कह सकते हैं या स्पर्धकों की भी, तो उसको कहेंगे स्पर्धक कितने होते हैं गुणहानि में, तो उसको कहेंगे एक गुणहानि में उसकी वो स्पर्धक शलाका है। एक स्पर्धक में जितनी वर्गणा है उसको कहेंगे वो स्पर्धक की वर्गणा शलाका। ये हाँ, अनुभाग में ये सब अनंत में, एक स्पर्धक में वर्गणा भी अनंत है, एक गुणहानि में स्पर्धक भी अनंत है, इतना ही नहीं नाना गुणहानियां भी अनंत है। तो नाना गुणहानि अनंत होगी तो अन्य वृश्य राशि भी अनंत में ही आएगी। तो ये तो हमने कल देखा था, ये सब ये सभी हमने नाम देखे थे, उसका अर्थ भी देखा था कि अविभाग प्रतिच्छेद वर्ग वर्गणा स्पर्धक गुणहानि और नाना गुणहानि। यहाँ तो भूमिका के रूप में बता रहे, जहाँ विषय आएगा वहां और भी कहीं उसको और भी समझाएंगे। ये 14 पृष्ठ पर अभी जो नया पैराग्राफ है दूसरा नंबर का, इन प्रथमादि स्पर्धकों की रचना। प्रथमादि ने प्रथम से लिया, पहला स्पर्धक दूसरा तीसरा, पहला स्पर्धक हम नीचे दिखाएंगे। ये अनुभाग की रचना, अनुभाग में अलग से जानना, निषेक रचना के साथ उसको नीचे ऊपर बिल्कुल मत समझना। ये बार बार कहने का प्रयोजन है कि हमें नीचे यानी वो नीचे के निषेक में ऐसा ही लगता है, ऐसा नहीं है। यहाँ तो मात्र अनुभागों की ही बात चल रही है। नीचे का अर्थ होता है मंद अनुभाग वाले और ऊपर का अर्थ होता है अधिक अनुभाग वाले। वो कौन से निषेक में, जहाँ कहीं भी हो, क्योंकि प्रत्येक निषेक में ये रचना होती है। प्रत्येक निषेक में अनंत परमाणु है तो उसमें जघन्य से उत्कृष्ट तक सभी भेद पाए जाएंगे। तो ये प्रथमादि स्पर्धकों की रचना एक के ऊपर एक करते हैं, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरह से बताएंगे उसको। इसलिए प्रथमादि स्पर्धकों को नीचे के स्पर्धक कहते हैं, यानी मंद अनुभाग वाले, और पश्चात के ऊपर स्पर्धकों को ऊपर के स्पर्धक कहते हैं, उसका अर्थ है तीव्र अनुभाग वाले। पूर्वोक्त विधान से प्रथमादि स्पर्धकों में परमाणुओं का प्रमाण क्रम से घटता घटता है और अनुभाग क्रम से बढ़ता बढ़ता है। उन्होंने डायरेक्ट स्पर्धकों की बात की, हमने तो प्रतिवर्गना की बात की। ये तो ख्याल में आई बात, इसमें कोई सवाल है? हमने देखा ना यो नीचे, हमने देखा था एक एक वर्गणाओं का समूह वो स्पर्धक हुआ, ये दूसरा स्पर्धक तीसरा स्पर्धक चौथा स्पर्धक। नीचे के स्पर्धक मंद अनुभाग वाले, ऊपर ऊपर अनुभाग बढ़ता है परंतु परमाणुओं की संख्या घटती चली जाती है। वहां प्रथमादि सर्व स्पर्धकों के, सर्व जैने प्रथम से लेकर अंत तक के स्पर्धकों के चार विभाग करेंगे। है तो अनंत परंतु उसमें चार विभाग करके उसको नाम भी देंगे, क्योंकि हम कैसे समझेंगे को ऊपर का पहला है कि नीचे का पहला है, तो उसको नाम देंगे तो समझेंगे। तो चार विभाग करेंगे। तो घाती कर्मों के, तो घाती कर्म कौन कौन से है वीरेश भाई? हाँ बरोबर, ज्ञान और दर्शन मोनी अंतरा, ये घाती कर्म है। तो उसके जो स्पर्धक है हर एक के अपने अपने, परंतु उन स्पर्धकों के जो चार विभाग करेंगे तो नाम सबके लिए सेम है। तो उनके नाम क्या है? तो मंद से तीव्रता की ओर, नीचे से ऊपर की ओर अगर कहेंगे तो लता दारू अस्थि और शैल समान। यानी यहाँ जो ये स्टिफनेस समझे, कठिनाई बढ़ती है ऊपर ऊपर, तो उसके यहाँ दृष्टांत देके उसको नाम दिए। तो ऊपर ऊपर के स्पर्धकों में अनुभाग अधिक है, तीव्र अनुभाग है, ऐसा समझना। यहाँ दारू का अर्थ होता है वो सूखी लकड़ी, दारू यानी वो मध्य वाला वाली दारू, वो नहीं दारू, ये दारू रू ह्रस्व है, उसका अर्थ भी अलग है। ये ह्रस्व दीर्घ समझते हैं कि नहीं समझते? तो एक कौन से चार नाम देखे दिव्याबेन? बहुत अच्छा, लता दारू अस्थि और शैल समान। तो लता समान, दारू समान, अस्थि समान और शैल समान। अप्रशस्त अघाती कर्मों के, घाती कर्मों के लिए प्रशस्त अप्रशस्त कुछ नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? हाँ वो सभी अप्रशस्त ही है, तो उनके नाम तो एक ही, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आघाती कर्मों में दो ग्रुप्स करेंगे, प्रशस्त और अप्रशस्त। तो पहले यहाँ अप्रशस्त के नाम बता रहे, अप्रशस्त घाती कर्मों के नींब, नींब भी कहते या नीम भी कहते, कांजीर, विष और हलाहल समान। नीम तो समझते हैं सब, कड़वाहट है उसमें। कांजीर यानी वो तो काली जीरी बोलते हैं, हाँ चिरायता बोलते हैं ना ऊपर, हिंदी में चिरायता बोलते हैं, और कड़िया तो क्या कहते हैं, करिया, तो वो कड़वाहट ज्यादा है, विष उसकी कड़वाहट और ज्यादा है, और हलाहल जो सबसे तीव्र विष है उसे सबसे ज्यादा, ऐसे उसका नाम दे है तो उसके समान। यानी यहाँ अप्रशस्त में अनुभाग अधिक 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 है, यानी तीव्र अप्रशस्त ऐसे कर्म है। और प्रशस्त घाती कर्मों के, जैसे सातावेदनीय प्रशस्त है, शुभ नाम कर्म है, शुभ आयु है, उच्च गोत्र, ये क्या है, प्रशस्त प्रकृतियां। तो प्रशस्त घाती कर्मों के, उनके नाम क्या क्या है, तो कहते गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। जैसे इसमें मीठास अधिक अधिक है तो ये दृष्टांत है, उसके समान चार भाग जानना। अप्रशस्त घाती कर्मों के नाम क्या है सरला में, बहुत अच्छा। और प्रशस्त के, प्रशस्त घाती कर्म, अघाती कर्म मैंने घाती कहा, हाँ हाँ, प्रशस्त अघाती कर्म, जैसे साता वेदनी आदि प्रशस्त है तो उसको कौन से नाम दिए हैं आपको याद है, हाँ गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, वो नीम वाला, वो कड़वाहट वाला है, वो प्रशस्त का है।
ये बाजार में शक्कर मिलती है वो खांड है,
हाँ,
और शक्कर में पूरा
नहीं नहीं नहीं, वो तो जिसको कहेंगे ना मिश्री, मिश्री शर्करा है, मिश्री ये मराठी में खड़ी शक्कर कहते हैं उसको, खड़ी शक्कर, गुजराती क्या कहते हैं, हाँ वो हमारे हिंदी भाई कहते हैं कि कहाँ खड़ी है साकर, तो वो बैठी घाती कर्मों में लता भाग के और कुछ धारु भाग के स्पर्धक देशघाती। अब ये जो घाती में ही देशघाती और सर्वघाती विभाग है, अघाती तो घात करते ही नहीं, तो उसमें सर्व या देश ऐसा कोई कहने का सवाल नहीं, वो तो अघाती है। तो घाती कर्मों में दो भेद थे, कौन से, सर्वघाती और देश, किसमें, स्पर्धकों में देख रहे हैं, यहाँ स्पर्धकों की बात कर रहे हैं, प्रकृतियों की नहीं। स्पर्धकों में दो प्रकार के स्पर्धक है, वैसे तो चार विभाग कर दिए हमने, कौन से चार विभाग कर दें, हाँ ये लता, दारू, अस्थि और शय, हरेक के अपने अपने अनंत अनंत है वो। तो ये लता भाग वाले जो है, जो अनंत, वो सभी कैसे, तो देशघाती है, स्पर्धक देशघाती है, यानी पूरा घात नहीं करते, इसका उदय भी हो और उसका प्रतिपक्ष चलता भी रहे उस गुण का कार्य, तो ऐसा हो सकता है। दारू जी के जो अनंत स्पर्धक है, उसमें से अनंत वे भाग प्रमाण जो है, अनंत वा एक भाग, तो वो देशघाती है, और अनंत बहुभाग है वो सर्वघाती है। अस्थि वाले और शैल वाले तो सर्वघाती ही है। तो ये जो चार में जो डिवीजन हुई है, लता, दारू, अस्थि और शैल, उसमें से लता भाग वाले और दारू का अनंत वा भाग, ये देशघाती स्पर्धक है। दारू का अनंत बहुभाग, अस्थि और शैल, ये कैसे, सर्वघाती स्पर्धक है, स्पर्धक की बात है, कौन से प्रकृतियों में कौन से, वो अभी हमने यहाँ पढ़ा नहीं है, यहाँ जितना हुआ है उतनी बात हम करेंगे, देखो फिर पढ़ेंगे। 14 पृष्ठ पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ, घाती कर्मों में लता भाग के और कुछ दारू भाग के, कुछ है वो अनंत विभाग प्रमाण, स्पर्धक देशघाती है, अवशेष सर्वघाती है। अभी वो कितवा भाग है क्या है वो तो डिटेल बाद में, अभी ये तो बिल्कुल सामान्य भूमिका यहाँ बता रहे। अवशेष उसका विशेष आगे आएगा, उसकी जो और विशेषता है और डिटेल है वो बातें आगे बताने वाले। इस तरह अनुभाग में विशेष है, केवल यहाँ उसके चार चार प्रकार है उसको यहाँ बता दिया है, उसकी जो और विशेषताएं होती है उसको तो बाद में बताएंगे। अभी इसमें तो नहीं लिखा है, परंतु ये जो है इसको हम एक स्थानीय, द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय, चतुस्थानीय, इसे भी इन्हीं के नाम है। जब चतुस्थानीय कहेंगे तो शैल वाले हैं, तो वहां तो बाकी है। इस तरह से उसका कहां कौन से बंद होता है, कहां कितना सत्व रह जाता है, उसके लिए इसको फिर जब उसका विषय आएगा वहां उसको याद करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। स्थिति संबंधी एक एक निषेक के परमाणुओं में ऐसा अनुभाग का विशेष पाया जाता है। क्या लिखा है जेपी साहब? क्या लिखा? स्थिति संबंधी एक एक निषेक, एक एक निषेक यानी प्रत्येक निषेक, यानी पहले निषेक से लेकर अंत निषेक तक के सभी निषेकों में, उसके सभी परमाणुओं में ऐसा अनुभाग का विशेष, ऐसा अनुभाग का विशेष यानी वो लता दारू ऐसे वगैरह जो है, जिस कर्म की जो बात है, जिस कर्म के निषेक है उसमें अपने अपने जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक के ऐसे अनुभाग पाए जाए। ऐसा नहीं कि नीचे के निषेकों में ऊपर के निषेकों में अधिक अनुभाग है, ऐसा नहीं। ये बात सिद्ध हुई ना इस वाक्य से? प्रत्येक निषेक में ऐसे अनुभाग है। फिर पढ़ना ये वाक्य, ये बहुत महत्व का वाक्य है कि स्थिति संबंधी एक एक निषेक के परमाणुओं में ऐसा अनुभाग का विशेष पाया जाता है। अनुभाग का विशेष यानी अनुभाग के इतने जो वेरिएशंस वो प्रत्येक निषेक में पाए जाते हैं। जिस तरह स्थिति के पहले निषेक पहले उदय में आते हैं और ऊपर के निषेक पश्चात उदय में आते हैं, उस तरह अनुभाग के पहले स्पर्धक पहले उदय में आने का और ऊपर के स्पर्धक पश्चात उदय में आने का नियम नहीं है। ये दोनों ओर से बता दिया, कितनी स्पष्ट रूप से बात बताइए। सामान्यपने से जहां जो उत्कृष्ट अनुभाग पाया जाता है वही वहां अनुभाग बंध का प्रमाण कहते हैं, यानी जिस समय जितना उत्कृष्ट अनुभाग बंध किया है उसमें से मैक्सिमम जो है स्पर्धक, वहां उसको हम कहेंगे वो उसका अनुभाग बंध हुआ। कि जरूरी नहीं कि हर समय वो उत्कृष्ट बंध करेगा, जैसे स्थिति कभी उत्कृष्ट कभी जघन्य वेरिएशन होता है बंधने में, किसके अनुसार, कषाय के अनुसार, वैसे अनुभाग में भी कषाय के अनुसार वेरिएशन होता है। स्थिति तो जहां मंद कषाय है वहां शुभ कर्म हो या अशुभ हो उसकी स्थिति कम बनती है, एक्सेप्ट आयु में डिफरेंस है, उल्टा है। जहां कषाय मंद वहां देवायु मनुष्य तिर्यंच आयु बड़ी, यानी लंबी आयु बनती है। अदरवाइज जहां जहां मंद कषाय है वहां प्रशस्त प्रकृतियों की स्थिति कम बन देगी, अप्रशस्त की भी कम बन देगी। यानी स्थिति के लिए तो एक ही रूल है, अनुभव के लिए उल्टा पुल्टा रूल है। जहां कषायों की मंदता है वहां प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभव अधिक बन देगा और अप्रशस्त का कम बन देगा। जहां संक्लेश ज्यादा है वहां अप्रशस्त कर्मों में अनुभाग और ज्यादा तीव्र बन देगा, और वहां कोई अगर प्रशस्त बनती हो तो उसका अनुभाग मंद बन देगा। अब कहां कौन सी प्रकृति का बंध है हमने वो बंध विचित्र में देखा था, है ना? हाँ, गति में भी होते ना, जैसे उसमें शुभ अशुभ नहीं होते, वो तो अशुभ ही है, परंतु मंद परिणाम में, जैसे अभी विशुद्ध परिणाम चल रहा है मंद परिणाम चल रहा है, तो मिथ्यात्व का भी मंद बंध हो रहा है ना उस समय। अभी पहले सप्ताह में पढ़ा उसकी बात नहीं, अभी वर्तमान में नया जो हो रहा है वो मंद मंद, अभी उदय में आने योग्य। उदय में तो सभी अभी उसका अपना विषय नहीं हुआ है, परंतु उदय रूप निषेक में ये सभी टाइप के यहाँ पड़े हैं। जो वर्तमान का उदय रूप निषेक है उसमें जघन्य से उत्कृष्ट तक अनुभाग वाले पड़े हैं, तो उदय किस रूप से होगा? तो हम कर्मों पर आरोप देते हैं कि जहाँ जघन्य का उदय होगा तो जीव के जघन्य यानी मंद परिणाम है, मान लेते हैं। क्रोध का उदय कैसा चल रहा है? तीव्र के मंद मंद चल रहा है, तो इसलिए मंद उदय चल रहा है, इसलिए जीव मंद परिणाम करता है ना। तो कहते वहां तो सभी पड़े है, तो मंद का उदय क्यों करे? क्योंकि जीव मंद कषाय कर रहा है, तो इस पर आरोप आएगा कि इसका उदय है, और बाकी जो तीव्र वाले हैं वो उस रूप होकर उदय में आएंगे उस समय, नहीं तो पराधीन हो गया जीव। वो राह देखेगा, कभी मंद होते हैं और कभी मैं मंद करूंगा। वही जीव जैसा भाव करता है उसका उदय कहलाएगा।
आपका ये कहना है कि मान लो मंदिर जीव मंदिर परिणाम कर रहा है, क्यों परिणाम कर रहा है? तो ये जो
मंद होकर
वाला जो कोई अनुवाद देने वाला जो कोई कर्मा वो 25 वाला
टर्न होकर उदय में एक समय के लिए,
उसको तो उसी समय उदय में आना ही है ना।
उदय में आना ही है, परंतु वो किस रूप से उदय में आ रहा है? अनुभाग का उदय क्यों? परमाणु तो उदय में आ ही रहे
हैं। ऐसा नहीं है कि 20 से 90 तक का एवरेज तो बीच वाला होता है, ऐसा नहीं
है। ऐसा नहीं है, एवरेज नहीं होता उसमें जो कुछ, क्योंकि अनंत वेरिएशन है वहाँ पर। यानी एक ही समय में है ना वो आया, इसलिए जीव को करना पड़ा, ऐसा कहाँ है? एक जैसे हम उदाहरण देते ना, दर्पण के सामने गए और वो प्रतिबिंब वहां है, तो पहले हम गए ना, बाद में दर्पण उसमें प्रतिबिंब आए, तो एक समय में दोनों हो रहे कार्य। कथन होगा वैसा, कथन में ऐसा ही आता है कि निमित्त वास्तविकता जो है,
तो फिर ऐसा हो सकता है ना क्योंकि परिणामों के अनुसार कर्मों को परिणाम होना पड़ता है।
नहीं, वो तो निमित्त है, जीव ने उनको निमित्त बनाया, वहाँ तो सारे पड़े हैं, सभी प्रकार के अनुभाग पड़े हैं, किसको निमित्त का आरोप किस पर आएगा? क्योंकि सभी परमाणु उनका उदय चल रहा है वहाँ, वो कर्म अपनी योग्यता से, जीव अपनी योग्यता से, जिसे आरोप किस पर देते हैं?
तो 90 की थी और 20 में उसे आना पड़ा, तो
समय पड़ा, पड़ा बिड़ा कुछ नहीं है। देखो आजकल क्या है, बच्चे टीवी देखते हैं इसलिए उनका बिहेवियर ऐसा, कहते हैं ना, कोई एक ही सीरियल चल रही है और दो चार अलग अलग बच्चे उसको देख रहे हैं, तो सबके ऊपर समान असर होना चाहिए। तो कोई उसमें से चोरी कैसे करना वो सीख लेता है, वो तो वहां तो सारे निमित्त रूप से सभी घटनाएं या सभी प्रकार के वहां दृश्य चल रहे हैं, तो जिसको जिसमें रुचि कहो या जिसका जैसा स्वयं का अपना परिणाम है, उपादान की योग्यता, वो उसको निमित्त बनाता है। हर एक कार्य में देखते हैं हम ऐसा। हाँ देखो, अभी हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर भी हम देखते हैं ना, अभी सभी निषेक है, अभी मान लेते हैं कि इनमें उत्कृष्ट अनुभाग पड़ा है, इतना उसका मैक्सिमम था कहीं पर, और जीव ने और अधिक संकलेश किया, तो इससे भी उत्कृष्ट बंधा कि नहीं बंधा? आपको याद है जयधवला में ये बात आई थी कि जयधवला में यह बात आई थी कि एक इंद्रिय से कोई जीव आया है, यानी निमित्त से होता है कि नहीं होता, इसकी बात मैं बताना चाहती हूँ। एक इंद्रिय में जीव लंबे काल तक रहता है तो सत्ता का अनुभाग अत्यंत हीन, जिसको हत समुत्पत्ति कहते हैं, अत्यंत हीन हो जाता है। अब ऐसा जो पंचेंद्रिय में जन्म लिया उसने, तो पंचेंद्रिय में आने पर उसका अनुभाग पंचेंद्रिय के योग्य होगा कि एकेंद्रिय के योग्य होगा? उसकी सत्ता में है नहीं ना। अगर निमित्त से यानी जितना अनुभाग का उदय होता है उतना अगर भाव करना पड़े ऐसा कहेंगे तो जीव को एकेंद्रिय में से आए हुए जीव को कभी उत्कृष्ट बंध हो ही नहीं सकता। मैंने तो ऐसा लिखा है कि अनुत्कृष्ट के उदय में भी उत्कृष्ट बंध हो सकता है, अपने पढ़ा है हमने इसको। स्थिति भी घट कर आया है, अनुभाग भी अत्यंत मंद करके आया है, तो उसको पंचेंद्रिय के योग्य बंध होता ही कैसे है? इसी का अर्थ क्या है, वो अनुभाग भी टर्न होकर वैसा वहां उदय चलता है। अभी आगे बढ़ेंगे, कुछ ख्याल में आती थोड़ी अटपटी नहीं सच्ची है यानी ये वास्तविकता, उसको विचार कर।
जो उदाहरण दिया उसमें तो 20-90 को छोड़ के सीधा 2500 के
आ गए। अभी ऐसा ही है क्या? अभी उसमें बहुत विशेषता है, बहुत डिटेल्स है कि हम जो ऑर्डिनरी जो कुछ विधान करते हैं तो कुछ मायने नहीं रखता उसके सामने। सत्ता में पड़े हुए अनुभव बढ़ जाएंगे और मूल में वो होगा कैसा संकलेश परिणाम उसको? यदि उत्कृष्ट का उदय नहीं है तो उसका उत्कृष्ट हो रहा है ना, वो क्या इंडिकेट करता है? जो कि अपनी योग्यता से वहाँ हो रहा है और सत्ता में पड़ा हुआ अनुभव बढ़ रहा है वहाँ। सभी डिग्री पड़ी है वहाँ, अभी किसको डिग्री कहेंगे हम? हम उसी को उदय कहेंगे जैसा जीव का भाव है, इसलिए डिग्री डिग्री कह सकते, इसलिए कह सकते क्योंकि जीव
तो
नहीं, वो पराधीन नहीं है। जीव ने भाव किया उसका उदय हो रहा है, उस पर उदय का आरोप आएगा। वो सभी वहाँ वेरिएशन पड़े हैं, अनुभाग के सभी वेरिएशन पड़े हैं, उदय किसका कहलाएगा?
उदय में बराबर ठीक है, बंद की बात कर रहा हूँ। अगर जीव ने खराब परिणाम किए तो उसको उसका डिग्री टू डिग्री बंद होना ही
है। हाँ होता है ना, परंतु उदय किसको कहेंगे हम? और वो डिग्री टू डिग्री जो भी बंद कहते हैं उसमें हर एक परमाणु में अलग अलग बंद हो रहा है। हमने अनुभाग के अनंत वेरिएशन देखे, अगर डिग्री टू डिग्री किसके लिए कहेंगे? परिणाम एक है और वेरिएशन इतने हैं, जो मैक्सिमम है उसको हम कहेंगे इतना बंद हुआ, उस पर आरोप आए। ये लास्ट टाइम मैं यहाँ शिविर हुआ था ना, प्रशिक्षण शिविर, उसमें मैंने निमित्त उपादान चलाया था और ये बातें बताई थी वहां सारी। हाँ वो खुश हुए, उन्होंने बताया ज्वेला बहन ने क्या क्या बातें बताई, हमको पता ही नहीं था ऐसी, यानी बहुत करना नहीं हो कि ऐसी, क्योंकि ऐसे हम सोचते थे ना कि अनुभव का जैसा उदय आता है जीव को वैसा परिणाम करना होता, ऐसा है ही नहीं है। हाँ देखो, सामान्यपने से जहाँ जो उत्कृष्ट अनुभव पाया जाता है वही वहाँ अनुभाग बंध का प्रमाण कहते हैं, क्योंकि अनुभाग बंध हुआ तो वो भी सभी निषेकों में उसके जो जैसे हमने देखा ना बंध हुआ तो सत्ता में ऑलरेडी निषेक थे, ये सत्ता के निषेक थे। अभी ये निषेक की रचना देखते हैं, उसमें भी नया बंध हुआ तो ये बंधे हुए परमाणु में तो हम अनुभाग दिखाएंगे, तो अनुभाग जितना कोई उत्कृष्ट है उसको हम ये लेफ्ट साइड को बताएंगे और यहाँ जघन्य, यानी उत्कृष्ट से जघन्य तक उस समय में बंधे हुए की बात। अब मान लेते सत्ता में जो इससे कम हो था तो वो सत्ता वाला भी वो उत्कृष्ट रूप से उस समय परिणमन करेगा, उसको उत्कर्षण कहेंगे, वो तो उत्कर्षण में आएगी बात। यदि सत्ता में अनुभाग कम है और अभी हमने एक्स्ट्रा बंधा है तो वैसा उसका हो जाएगा, यदि कम बनता है तो उसके कम के साथ तो मिल ही जाएगा उसको, तो जहां अनुभाग बंध कौन सा कहलाएगा? अभी नया जो बंध हो रहा है तो उसने इस रूप से जो मैक्सिमम है उसको कहेंगे इतना अनुभाग का बंध किया, परंतु उस समय सभी जो हीनादिक सभी बंध हो रहे उसके, क्योंकि अभी हमने देखा ना अनुभाग के सभी स्पर्धक वहां रचना हो गई, जघन्य से लेकर ये जो यहाँ का जो उस समय बंधने वाले का जो उत्कृष्ट है वहां तक के सभी स्पर्धक वहां तैयार हुए। ऐसा नहीं कि एक विशिष्ट अनुभाग बंधा, जैसे स्थिति में देखते हैं स्थिति कितने बंदे कहलाएंगे जो टॉप मोस्ट निशे की है उसको, परंतु आबाधा के ऊपर हर एक निशे की अलग अलग स्थिति। ऐसे भी अनुभाग में जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक जितने अनुभाग बंदे हैं उस समय का जो उत्कृष्ट है उतना अनुभाग बंद हुआ ऐसा कहेंगे। हल में ही बात आगे ऐसा बंद का स्वरूप था। अभी तक हमने प्रकृति बंद देखे, प्रदेश बंद, स्थिति बंद और अनुभाग। अभी सत्व की बात है, बंद के बाद सत्व है ना, सत्व ने सत्ता। पुनश्च अनेक समयों में बंधे हुए कर्म का विवक्षित कालादि में जीव के साथ अस्तित्व रहता है उसका नाम सत्व है। क्या कहना है, एक समय में बंधा है वो क्या होता है, उसका सत्ता में जो ऑलरेडी कर्म पड़े उसके साथ आकर वो जुड़ जाता है। कितने परमाणु निकल जाते हैं, कितने नए नए आते हैं, तो अनेक प्रत्येक समय अलग अलग समय में बनते रहते हैं और कुछ काल तक वो जीव के साथ सत्ता में पड़े रहते हैं, उसको कहेंगे सत्व। कर्मों की सत्ता है वो कर्म का सत्व है कहेंगे उसको, उसका अस्तित्व है जीव के साथ। तो कहते अनेक समयों में बंधे हुए कर्म का विवक्षित कालादि में जीव के साथ अस्तित्व रहता है उसका नाम सत्व है। वह चार प्रकार का है, जैसे हमने बंध चार प्रकार का देखा वैसे सत्व भी चार प्रकार का है। प्रकृति सत्व यानी सत्ता में कौन कौन सी प्रकृतियां उसको कहेंगे प्रकृति सत्व। प्रदेश सत्व यानी सत्ता में कितने परमाणु पड़े, एक समय में तो एक समय प्रबद्ध बनता है, एक समय प्रबद्ध जितना उदय में आता है और सत्ता में कितना पड़ा रहता है, डेढ़ गुना हानि गुणित समय प्रबद्ध यानी बहुत अधिक मात्रा में वहां पड़े हैं परमाणु। अब स्थिति सत्व, स्थिति सत्व का अर्थ होता है सत्ता में जो पड़े हैं वहां मैक्सिमम ऊपर का निषेक जो है कितने ऊपर है समय से, वर्तमान समय से कितने ऊपर है, तो हम कहेंगे वो सत्व कितना है। जैसे हम कहते हैं समय दर्शन होता है तो अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण हो जाता है, वो औक्षमिक समय क्यों, औक्षमिक क्यों कहा अश्विन ने, ये मैंने आगे एक पूछ लगा है कौन सी, अंत कोड़ा कोड़ी सागर होता है औक्षमिक समय क्यों, ऐसा मैंने कह दिया क्यों, औक्षमिक समय तो क्यों कहा, ये मेरा प्रश्न। यानी वेदक बिना घात के वैदिक समय तो हो सकता है, सत्तर कोड़ा कोड़ी की स्थिति बांधी किसी ने और एक अंतर्मुहूर्त में परिणाम विशुद्ध हुए समय दर्शन हुआ वैदिक समय को, जो साधी मिथ्या दृष्टि है हो सकता है, ये बातें मालूम नहीं थी ना। सत्व की बात है, नया बंद उसके भी अंत कोड़ा कोड़ी होगा, मिथ्यात्व का तो होगा ही नहीं। नहीं 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 आया ध्यान नहीं था,
ये उसकी बिल्कुल अपोजिट हो गया, कम वाला ज्यादा हो रहा था, ज्यादा वाला कम हो रहा था। मुझे अपने आप मुझे बताया ना कि जो हर समुद्र करके आया तो अनुभव कम था,
वो अनुभव की बात,
अनुभव की बात हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन वो वहां क्या था, कम से ज्यादा और यहाँ ज्यादा से कम,
बिल्कुल
ये सवाल था।
एक केंद्रीय से आया उसकी स्थिति भी कम थी, अनुभाग भी कम था, पंचेंद्रीय में जन्म लेगा तो पंचेंद्रीय के योग्य होगा। अब यहाँ कुछ अलग बात बता रहे, अभी कौन सी बात करें, जो उपशम सम्यक को प्राप्त कर, ये सब आने वाली बात है। प्रथम उपशम सम्यक के पहले क्या क्या होता है तो हमने देखा था कि प्राय लब्धि में आता है तभी एक इतना बड़ा सिद्धि कांडक होता है कि सत्ता में जो पड़े है अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों के, मिथ्यात्व की बात है अन्य भी कर्मों की, तो अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण हो जाते। तो हम तो ऐसा समझे ना समय दृष्टि के कितना है सत्व तो अंत कोड़ा कोड़ी सा, तो वहां कहते हैं कि जो वेदक समय दृष्टि है सादी मिथ्या दृष्टि को डायरेक्ट क्षेत्र समय तो हो सकता है, तो उसने स्थिति का घात किए बिना भी उसको समय तो हो सकता है, यानी किसी ने उत्कृष्ट संकलेश परिणाम किए, सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर का बंद किया फिर एक अंतर्मूर्त बीत गया यानी उसके परिणाम पलट गए विशुद्ध हो गए और सम्यक तो प्राप्त किया, तो उसकी स्थिति कितनी पड़ी है? स्थिति की बात है, बंध की नहीं, क्योंकि उसको तो मिथ्या तो बंध का तो सवाल ही नहीं है उसको। और अन्य भी ज्ञानावरणादि का बंध करेगा, वो तो अंत कोड़ा कोड़ी का करेगा, नया बंध परंतु सत्ता में इतना पड़ा है, ये मैं कहना चाहती हूँ। तो यहाँ बात स्थिति सत्व की मैंने बताई, माइनस एक अंतर्मूर्त दोनों में होगा, क्योंकि एक अंतर्मूर्त बीत गया है तो सत्तर कोड़ा कोड़ी में से एक अंतर्मूर्त कम हुआ है। अभी जितना मिथ्यात्व है उतना ही सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति बनेगी, तीनों की स्थिति समान रहेगी। तो ये स्थिति सत्व, जब अभी जहां जिसका प्रकरण आता है वहां ये सभी बातें आएगी कि स्थिति कितनी बन जाती है। परंतु इसलिए यहां बताते हैं कि स्थिति सत्व अलग बात है, स्थिति बंध अलग बात है, अनुभाग सत्व अलग बात है, अनुभाग बंध अलग बात है। जब हम ऊपर श्रेणी की आदि बात करेंगे तो अनुभाग बंध कहो स्थिति बंध इतना कम होता है, परंतु स्थिति सत्व उस प्रोपोर्शन में उसका कितना है तो उसका अपना अपना जो कोई प्रोपोर्शन होगा वहां पर वो उतना रहेगा। तो स्थिति सत्व की बात कर रहे हैं कि स्थिति बंध की कर रहे हैं, ये हमको देखना है ना। स्थिति सत्व है सत्ता की स्थिति, ये सत्ता में जो कर्म पड़ा है उसकी अगर स्थिति घटती है तो उसको हम कहेंगे वो स्थिति सत्व घट गया, और जो नया होने वाले बंध घट जाता है तो हम कहेंगे स्थिति बंध घट गया। दोनों प्रोसेस होते हैं ऊपर, अभी समय तो होता है तब, अब उसके लिए कौन से प्रोसेस है वो सब आते आएगी।
लेकिन जो निर्जरा का प्रोसेस, जो समूह का प्रोसेस होगा उसमें तो कम ही बनेगा, तो कम ही अनुभाग वाला होगा। जो निर्जरा का प्रोसेस है जो स्टॉक में पड़ा है वो निर्जरा तो उसको खत्म करेगी ना।
अभी वो भी किस कौन से कर्मों की होगी, कैसी होगी, कितने अनुभाग में होगी, वो सब आएगा। अभी तो हम किसको क्या कहना, सत्व किसको कहना, बंध किसको कहना, उसकी बात चल रही
है। मिथ्यात्व की निर्जरा की बात कर रहे हैं, तो समय की
मिथ्यात्व की तो निर्जरा नहीं होगी, मिथ्यात्व की निर्जरा तो मिथ्या दृष्टि को होगी। हाँ,
नहीं माने मिथ्यात्व जो होगा वो धीरे धीरे कम होके सत्ता में भले मिथ्यात्व पड़ा होगा तो कम होके आएगा ना।
किस रूप से होगा?
समय प्रकृति के रूप से।
हाँ, समय प्रकृति रूप से हो जाएगा, परंतु वो कितनी मात्रा में हा? क्या कहते
हैं
उसका भी अनुभाग जो है समय मिथ्या समय प्रकृति का, उसका तो उत्कृष्ट ही रहता है लास्ट तक। वो तो अलग है सब, उसके बहुत सारे नियम है, उसमें नहीं उलझेंगे अभी हम। और वो कहने से ख्याल में भी नहीं आएगा। विस्तार से जहां जयधवला की अपनी बातें हुई थी उसमें हमने देखा ना कहां कितना अनुभाग होता है, क्या होता है, कौन से प्रकृतियों में। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अभी, क्योंकि आगे के बहुत एडवांस बातें कहने से कुछ प्रयोजन नहीं है, समझेंगे ही नहीं अभी स्टेज पर। देखो अभी हमने देखा चार प्रकार है, प्रकृति सत्व, प्रदेश सत्व, स्थिति सत्व और अनुभाग सत्व। अब इसका अर्थ बताते हैं। वहां अनेक समयों में बंधी हुई ज्ञानावरणादि मूल प्रकृतियों और उनकी उत्तर प्रकृतियों का जो अस्तित्व वह प्रकृति सत्व है। अभी जो हमेशा ही जो बांधने वाले हैं तो उनका तो अस्तित्व बना रहेगा वहां। जैसे अभी हम एक इंद्रिय जाति बांधी है कभी कभी, वो भी सत्ता में पड़ा है। केवल अभी हमारे आपकी सत्ता में कौन सा कर्म नहीं आप गारंटी से कह सकते हैं? तीर्थंकर प्रकृति का आरक भी हो सकता है, उद्वेलना कर रहे हो आपको पता नहीं है, या उद्वेलना करके नष्ट कर दी है। ये ख्याल में नहीं, उसका सत्व कहीं उन प्रकृतियों रूप परिणमित ऐसे अनेक समयों में ग्रहण किए हुए पुद्गल परमाणु। ये बार बार अनेक समयों में ग्रहण किए हुए कहा है, क्योंकि एक समय में जो वर्तमान में बंध है उसको तो हमने बंध कहा था, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। सत्ता में पड़े हुए हैं कभी कभी बंधे थे तो उसको कहेंगे प्रकृति सत्व, प्रदेश सत्व में उनकी संख्या को लेना, वह प्रदेश सत्व है। देखो ये जयधवला के शुरू शुरू के भाग है ना, एक एक परमाणु के डिफरेंस से जो अलग अलग वेरिएशंस होते हैं उसकी चर्चा है वहां पर, आपको याद है प्रदेश विभक्ति, अनुभाग विभक्ति, स्थिति विभक्ति, एक एक पुस्तक एक एक पर है।
तो प्रदेशों में इस प्रकार बैठाए,
हाँ प्रदेशों में वहां प्रति समय जो एक एक समय प्रबद्ध ग्रहण किए हैं, एक समय में एक समय प्रबद्ध ग्रहण किया है, उनके पूर्वोक्त प्रकार से एक एक निषेय क्रम से निर्जरित होते हैं। क्या कहना चाहते हैं, एक समय में बंधा हुआ एक साथ कभी उदय में नहीं आएगा, क्योंकि एक समय बंधा है उसकी निषेक रचना हुई, अब वो क्रम से एक एक समय में उदय में आएंगे, दूसरे समय में जो बंधा उसकी वो अपनी अपनी निषेक रचना है, तीसरे समय बंधे अपनी अपनी निषेक रचना। तो हर एक समय प्रबद्ध का जो एक निषेक उदय में आने योग्य है उन सबकी ग्रैंड टोटल करेंगे वो वर्तमान का सत्ता का निषेक कहलाएगा, उदय रूप निषेक, फिर सत्ता का द्वितीय निषेक, सत्ता का तृतीय निषेक, यह सत्व की बात है। वहां जिन समय प्रबद्धों के सर्व निषेक गल गए हैं उनका तो अस्तित्व रहा ही नहीं, उस समय प्रबद्ध का बात, उस प्रकृति का नहीं कहा, कोई सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर पहले बांधी थी उस समय बंधा हुआ समय प्रबद्ध कहते उसके सभी निषेक गए, उसका भी एक भी परमाणु एक भी निषेक बाकी नहीं, ऐसा कहेंगे। किसी समय प्रबद्ध का अन्य निषेक गलकर एक निषेक अवशेष रहा, बाकी तो उसके गल गए अभी एक ही निषेक बाकी, किसी के अन्य निषेक गलकर दो निषेक अवशेष रहे, दो निषेक अवशेष का अर्थ है एक तो उदय रूप और एक द्वितीय समय में पड़ा है, तो दो समय उसके बाकी, दो निषेक बाकी। इसी क्रम से जिसका एक निषेक गल गया है उसके उस बिना सर्व निषेक अवशेष रहे, इसका अर्थ ख्याल में आता है ना, पहले हमने 48 निषेक मान लिया था, 48 अलग अलग समय प्रबद्धों का, तो जिसके निषेक गल गए उसकी तो बात ही नहीं करनी, किसी का एक ही निषेक बाकी, किसी के दो निषेक बाकी है, यानी उसका उपांत निषेक उदय रूप है, जिसके तीन निषेक बाकी है उसके ऊपर के दो सत्ता में और नीचे का उदय रूप, जिसके चार निषेक बाकी उसका एक निषेक उदय रूप है बाकी तीन सत्ता में पड़े, ऐसे किसी के ये 48 निषेक है पहला ही निषेक उदय रूप है बाकी 47 पड़े सत्ता में, तो सत्ता में कितने हैं वो उदय रूप से लेकर सभी 1+2+3+4 वो सब इतने बाकी। जिसका कोई निषेक नहीं गला उसके सर्व ही निषेक अवशेष है, इस तरह अवशेष रहे हुए सर्व निषेकों के परमाणुओं का मिला हुआ प्रमाण, यानी वो सत्व में सत्ता में कितने परमाणु हैं तो उसका प्रमाण बताते हैं किंचित कम डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण, यानी एक समय प्रबद्ध में अनंत परमाणु है उसको डेढ़ गुणहानि, यानी गुणहानि का प्रमाण कितना होता है तो पल्ले का असंख्या तो उसको डेढ़ गुणा करना, उससे समय प्रबद्ध वाला जो अनंत है उसको गुणा करना, तो जितने अनंत अनंत हो गए उतने सत्ता में परमाणु पड़े। इसका वर्णन गोमरसार कर्मकांड के कर्म स्थिति रचना सद्भाव अधिकार में त्रिकोण रचना द्वारा दिखाया है वह जानना, ये तो हमने जीवकांड में भी इसको पढ़ा था, कर्मकांड में दोबारा पढ़ा था, उसका गणित उसकी अर्थ संदृष्टि सब डिटेल में देखे। ऐसे इन परमाणुओं का अस्तित्व वह प्रदेश सत्व जानना, परमाणुओं का अस्तित्व अर्थात वो कर्म रूप जो है उसकी बात है, जैसे परमाणुओं का अस्तित्व आप कहेंगे अनादि से, यहाँ किस रूप से बात चल रही, जो कर्म रूप है परिणामित उनकी बात चल रही, जब वो कर्म से अकर्म रूप हो जाएंगे और भले जीव के साथ ही वहां चिपके रहेंगे उसको हम अभी जीव का कर्म नहीं कहलाएंगे। यहाँ यदि एक प्रकृति की विवक्षा होगी तो एक प्रकृति संबंधी समय प्रबद्ध ग्रहण करना, और यदि सर्व प्रकृतियों की विवक्षा होगी तो सर्व प्रकृतियों संबंधी समय प्रबद्ध जानना, ग्रहण करना यानी समझना जानना। क्या कहना चाहते हैं, किसकी बात चले? टोटल कर्म कितना है? तुम कहेंगे डेढ़ गुना नहीं गुना समय प्रबद्ध, तो वो समय प्रबद्ध ने आठों कर्मों का मिला हुआ कहेंगे। अब ज्ञानावरण आदि की, ज्ञानावरण प्रकृति की, उसका सत्व कितना है पूछेंगे, तो ज्ञानावरण के खाते में जो समय प्रबद्ध है उसका अपना समय प्रबद्ध है, उसको डेढ़ गुनहानी से गुणा करें। उन अनेक समयों में बंधी हुई प्रकृतियों की स्थिति का नाम स्थिति सत्व है, क्योंकि अलग अलग स्थिति बनती रही। अभी वर्तमान में अंतिम निषेय कौन से पॉइंट पर है, वर्तमान से कितने समय ऊपर है, उसको कहेंगे वो स्थिति सत्व। जैसे हम देखें प्रथम ऑप्शन सम्यक हुआ तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उसने वो स्थिति घटाई, तो उसका स्थिति सत्व कितना कहलाएगा, अंत कोड़ा कोड़ी सागर, वो स्थिति का सत्व। इतने ही निषेक है उसके सत्ता में भी, उसके परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिले, गए नहीं जीव को छोड़कर। उसका स्थिति सत्व जो है यानी सत्ता का जो स्थिति है वो घट गई है। स्थिति बंध और स्थिति सत्व में क्या अंतर हुआ सलग? सत्ता में नहीं, अभी नया वर्तमान में कितना बंध कर रहा है उसको हम स्थिति बंध कहते हैं। जैसे कोई समय दृष्टि है, कितना स्थिति सत्व था, अंत कोड़ा कोड़ी सागर, अब वो मिथ्या दृष्टि हुआ और उसके संकलेश परिणाम हुए और उसने स्थिति बड़ी बांध दी, सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर, तो उसका स्थिति सत्व था कम, अभी कितना बढ़ गया, अभी ये सत्तर कोड़ा, इतना नया बंध भी किया। तो अनेक समयों में बंधी हुई प्रकृतियों की स्थिति का नाम स्थिति सत्व है। वहां उन प्रकृतियों के जिस समय प्रबद्ध का एक निशेष अवशेष रहा है उसकी एक समय की स्थिति है, यानी उस समय प्रबद्ध की, वो उस निषेक की, जिसके दो निषेक अवशेष रहे हैं उसके प्रथम निषेक की एक समय और द्वितीय निषेक की दो समय स्थिति है। स्थिति है का अर्थ है वो वर्तमान से दो समय ऊपर पड़ा है, दो समयों में उदय रूप होने वाला। इस क्रम से जिसका एक भी निषेक नहीं गला है उसके प्रथम आदि निषेक की एक दो आदि समयों से अधिक आबाधा काल मात्र स्थिति के क्रम से वहां अंत निषेक की संपूर्ण स्थितिबंध मात्र स्थिति है। क्या कहना चाहते हैं, अभी वर्तमान में किसी निषेक की स्थिति कितनी है, तो किसी ने सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर बंध किया तो उस निषेक की स्थिति कितनी है, तो संपूर्ण सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर आबाधा प्लस उसकी जो स्थिति है, तो उस समय सत्ता की भी स्थिति इतनी कहलाए। मान लेते हैं इसका बंध किया इतना सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर का, और दूसरे समय में उसने कुछ कम बंध किया, साठ कोड़ा कोड़ी मान लो ना, तो उसकी स्थिति कितनी होगी दूसरे समय में, एक समय कम सत्तर कोड़ा कोड़ी, क्योंकि सत्तर कोड़ा कोड़ी पड़ी है ना वहां पर, सत्ता में से तो एक ही समय घट गया उसका, क्योंकि उसने एक समय पूर्व ही इतनी बड़ी स्थिति बांधी थी वो पड़ी है वहां पर। परंतु बंध जो वर्तमान में होता है उसको बंध कहेंगे और सत्ता में जो पड़ा है उसको सत्व कहेंगे। यहां सत्व में अनेक समय प्रबद्धों के एक समय में उदय आने योग्य अनेक निषेक मिलकर जो होता है वह एक निषेक जानना। सत्ता का निषेक किसको कहेंगे, जो अभी वर्तमान उदय रूप है, अनेक अलग अलग समय में बंधे हैं और हर एक समय प्रबद्ध में से एक एक निषेक पकड़ा, जो अभी वर्तमान में उदय रूप है, जिनकी स्थिति पूरी हुई है, तो वो सत्व का पहला निषेक कहेंगे। सत्ता का दूसरा निषेक जो द्वितीय समय में उदय आने योग्य सभी समय प्रबद्ध उनके इकट्ठे किए हुए जो निषेक है उसको सत्व का यानी सत्ता का दूसरा निषेक कहेंगे। ऐसे सत्ता का तीसरा निषेक, सत्ता का चौथा निषेक। इनमें परमाणुओं का प्रमाण आगे कहेंगे, सब कुछ यहाँ बताएंगे तो यहीं से भाग जाएंगे लोग, कहते हैं आगे कहेंगे। सामान्यपने से यदि एक प्रकृति की विवक्षा होगी तो उसके पहले या पश्चात बंधे हुए जिस समय प्रबद्ध के बहुत निषेक सत्ता में पाए जाते हैं, उस समय प्रबद्ध के अंत के निषेक की जितनी स्थिति है उस प्रमाण स्थिति सत्व कहना। फिर से पढ़ेंगे इस वाक्य को। सामान्यपने क्या कहना, यदि एक प्रकृति की विवक्षा होगी, विवक्षा यानी हम कथन कहेंगे, किसका मान लेते ज्ञान है उनका या मिथ्यात्व का, जो कुछ उसका अगर कथन करना है तो उसके पहले या पश्चात बंधे हुए जिस समय प्रबद्ध के, पश्चात यानी वर्तमान के बाद ऐसा नहीं अर्थ लेना, बहुत पहले या थोड़े पहले, पहले या पश्चात का अर्थ होता है मान लेते हैं कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध 10 वर्ष पहले किया, या किसी ने बाद में किया है अभी अभी एक अंतर्मूर्त पहले किया, या किसी ने एक समय पहले किया, तो उसको हम कहेंगे पश्चात किया। तो पहले या पश्चात बंधे हुए जिस समय प्रबद्ध के बहुत निषेक सत्ता में पाए जाते, उसका अर्थ क्या है, उसकी स्थिति लंबी पड़ी है सत्ता में, उस समय प्रबद्ध के अंत के निषेक की जितनी स्थिति है उस प्रमाण स्थिति सत्व कहना। क्या कहना चाहते फिर देखेंगे। अलग अलग समयों में बंधा है, कितना कोई इतना बंधा, अभी उसके नेक्स्ट समय में इतना बंधा, उसके नेक्स्ट समय में इतना बंधा, अभी सत्ता में जो कोई वेरिएशन है तो जिसका मैक्सिमम है उसको स्थिति सत्व कहेंगे। वो कभी बंधा है उससे कुछ नहीं लेना देना नहीं। यदि हर समय उतना का उतना बंधता तो हम कहेंगे अभी बंधा हुआ सबसे बड़ा है, ये जरूरी नहीं है। जब कभी बंधा है सत्ता में अभी जिसके निषेक मैक्सिमम पड़े हैं उसको क्या कहेंगे, उतना स्थिति सत्व, यानी उसका निषेक वर्तमान से कितने समय ऊपर पड़ा है उतनी सत्ता का वहां स्थिति उतनी पड़ी है, ऐसा कहेंगे। कि पहले या पश्चात बंधे हुए जिस समय प्रबद्ध के बहुत निषेक सत्ता में पाए जाते हैं उस समय प्रबद्ध के अंत के निषेक की जितनी स्थिति है, क्योंकि ये सबसे टॉप मोर टॉप पर है तो उसकी जो स्थिति है वो सत्ता की स्थिति कहलाएगी, उस प्रमाण स्थिति सत्व कहना। और यदि सर्व प्रकृतियों की विवक्षा होगी तो जिस प्रकृति के समय प्रबद्ध के अंत निषेक की बहुत स्थिति हो उसके अंत निषेक की स्थिति प्रमाण स्थिति सत्व कहना। अभी वहां कोई ज्ञानावरण के दर्शन ऐसा नहीं कहेंगे, तो सत्ता में स्थिति सत्व कितना है, सबसे अधिक जो है कुछ है। उन अनेक समयों में बंधी हुई प्रकृतियों का जो अनुभाग सत्ता रूप है उसका नाम अनुभाग सत्व है। उसमें भी हमें मैक्सिमम अनुभाग लेना है, क्योंकि मिनिमम से मैक्सिमम सभी वेरिएशन है और सभी निषेकों में पड़े हैं। तो अभी तक जो उत्कृष्ट बंधा हुआ है उसको हम उसको कहेंगे, वो सत्ता में पड़ा है तो कहेंगे उसको अनुभाग सत्व। इसमें एक बात है, जैसे स्थिति बांधी 70 कोड़ा कोड़ी और हर समय में उसमें से एक एक कम हो रहा, यदि उससे अधिक स्थिति नहीं बांधी या उतनी स्थिति नहीं बांधता है तो उसका तो एक एक निशे गल जाएगा तो स्थिति घटती चली जाएगी, परंतु अनुभाग का ऐसा नहीं है। अनुभाग तो बंधा है तो सभी निषेधों में पड़ा है तो वो तो रहेगा वैसा, अभी उसके नियम अलग है। अनेक समय में बंधी हुई प्रकृतियों का जो अनुभाग सत्ता रूप है उसका नाम अनुभाग सत्व है, ये सत्व की बात चल रही है। वहां एक समय में उदय आने योग्य अनेक समय प्रबद्धों के निषेक मिलकर हुआ सत्ता संबंधी एक निषेक, समझ में आई बात? वर्तमान का जो निषेक है या सत्ता का निषेक किसको कहेंगे? अलग अलग समय में बांधे हुए समय प्रबद्धों में से हर एक में से कुछ कुछ परमाणु उस एक निषेक में, सत्ता के एक निषेक में है, उसके परमाणु में अथवा अनेक समयों में बंधे हुए समय प्रबद्धों के गलने के पश्चात अवशेष रहे निषेक, उन सबके परमाणुओं में पूर्वोक्त प्रकार अविभाग प्रतिच्छेद वर्ग वर्गणा स्पर्धक रूप अनुभाग का विशेष जानना, वहां परमाणुओं का प्रमाण पूर्वोक्त प्रकार से लाना, यानी हीन अनुभाग वाले मैक्सिमम होते हैं, अधिक अनुभाग वाले कम होते हैं, वो वर्गणा स्पर्धक उसकी रचना वैसी होगी, परंतु ऐसा नहीं कि ऊपर के निषेकों में ज्यादा है नीचे के, ऐसा नहीं, ये अनुभाग की रचना प्रत्येक निषेक में होगी। सामान्यपने से वहां पूर्वोक्त चार प्रकार से अनुभाग का ग्रहण जानना, ये तो हम इतने अनंत वेरिएशन नहीं कहेंगे, चार प्रकार पाए जाते कहेंगे, कभी कभी सत्ता में कहेंगे तो अनुभाग घट गया है तो वो शैल वाले नहीं हो गए ऐसा कहेंगे हम, तो जहां जो है सत्ता का अनुभाग उसको कहेंगे। इस तरह सत्व का निरूपण किया, अब यहीं रुकेंगे हम। जावानी के ज्ञान ते सूझे नो कालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो।